एहेस्केल अध्याय 17। अध्याय 17 में वो एक विशाल उकाब का दृष्टांत सुनाता है। इस उकाब के कारण कुछ लोग अमेरिका को इस भविष्यवाणी का भाग बना देते हैं, क्योंकि उनके झंडे में चील का चित्र है, परंतु यथार्थ में भविष्यवाणी अमेरिका के विषय में नहीं है। एहेस्केल अध्याय 17 पद 1 और 2। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इसराइल के घराने से ये पहेली और दृष्टांत कह। उकाब का नाम आने से कोई यह न समझे कि ये संकेत अमेरिका की ओर है, ना ये इसराइल के लिए है। कोई गलत अर्थ निर्धारण करके वचन को विकृत ना करे। एहेस्केल अध्याय 17 पद 2 और 3। प्रभु यहोवा यूं कहता है, एक लंबे पंख वाले परों से भरे और रंग बिरंगे बड़े उकाब पक्षी ने लेबनोन जाकर एक देवदार की फुनगी नोच ली। सबसे बड़ा उकाब है नबुकदनेज़र और देवदार की फुनगी है दाऊद का वंशज यहोयाकीम, जो उस समय राजा था। एहेस्केल अध्याय 17 पद 4। तब उसने उस फुनगी की सबसे ऊपर की पतली टहनी को तोड़ लिया और उसे लेन देन करने वालों के देश में ले जाकर व्यापारियों के एक नगर में लगाया। राजा बंदी बनाकर बाबुल ले जाया गया। एहेस्केल अध्याय 17 पद 5। तब उसने देश का बीज लेकर एक उपजाऊ खेत में बोया। उसने राजा के पुत्र सिदकिया को सिंहासन पर बैठाकर वाचा बांधी कि वो उसका अधीनस्थ राजा रहेगा। सिदकिया ने यहोवा की शपथ ली कि वो नबुकदनेज़र की संधि नहीं तोड़ेगा और प्रजा का राजकाज अधीनस्थ राजा के रूप में देखेगा। वास्तव में उसने वाचा को नहीं निभाया और विद्रोह किया। एहेस्केल अध्याय 17 पद 5 से लेकर 7 तक। तब उसने देश का बीज लेकर एक उपजाऊ खेत में बोया और उसे बहुत जल भरे स्थान में मजनू की नाई लगाया और वो उगकर छोटी फैलने वाली अंगूर की लता हो गई, जिसकी डालियां उसकी ओर झुकी और उसकी जड़ उसके नीचे फैली। इस प्रकार से वो अंगूर की लता होकर कनखा फोड़ने और पत्तों से भरने लगी। फिर और एक लंबे पंख वाला और परों से भरा हुआ बड़ा उकाब पक्षी था और वो अंगूर की लता उस स्थान से जहां वो लगाई गई थी उस दूसरे उकाब की ओर अपनी जड़ फैलाने और अपनी डालियां झुकाने लगी कि वो उसे खींचा करे। सिदकिया ने मिस्र के पास संधि संदेश भेजा था कि वे दोनों मिलकर बाबुल का सामना करें। एहेस्केल अध्याय 17 पद 8 से लेकर 10 तक। परंतु वो तो इसलिए अच्छी भूमि में बहुत जल के पास लगाई गई थी कि कनकाएं फोड़े और फले और उत्तम अंगूर की लता बने। सो तू ये कहे कि परमेश्वर यहोवा यूं पूछता है, क्या वो फूले फलेगी? क्या वो उसको जड़ से ना उखाड़ेगा और उसके फलों को ना झाड़ डालेगा कि वो अपनी सब हरी नई पत्तियों समेत सूख जाए? इसे जड़ से उखाड़ने के लिए अधिक बल और बहुत से मनुष्यों की आवश्यकता ना होगी। चाहे वो लगी भी रहे तो भी क्या वो फूले फलेगी? जब पुरवाई उसे लगे तब क्या वो बिल्कुल सूख ना जाएगी? वो तो जहां उगी है उसी क्यारी में सूख जाएगी। मिस्र के साथ उसकी संधि स्थिर नहीं रहेगी, इसराइल राष्ट्र का नाश होगा, सिदकिया का भी नाश होगा, और वो उसके विद्रोह के बारे में कहता है। एहेस्केल अध्याय 17 पद 11 से लेकर 13 तक। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, उस बलवा करने वाले घराने सिदकिया से कह, क्या तुम इन बातों का अर्थ नहीं समझते? फिर उनसे कह, बाबुल के राजा ने यरूशलेम को जाकर उसके राजा और प्रधानों को लेकर अपने यहां बाबुल में पहुंचाया, तब राजवंश में से एक पुरुष को लेकर। इस दृष्टांत में अमेरिका का कोई संदर्भ नहीं है, पर बाज के दृष्टांत का स्पष्टीकरण है। इसका अर्थ है कि बाबुल का राजा यरूशलेम आया और राजा तथा प्रधानों को बंदी बनाकर अपने साथ बाबुल ले गया। उनसे राजा के वंशज अर्थात सिदकिया को वाचा बांधकर सिंहासन पर बैठाया। एहेस्केल अध्याय 17 पद 13 से लेकर 16 तक। उससे वाचा बांधी और उसको वश में रहने का शपथ खिलाई और देश के सामर्थी पुरुषों को ले गया कि वो राज्य निर्बल रहे और सिर ना उठा सके, वरन वाचा पालने से स्थिर रहे। तो भी इसने सिदकिया ने घोड़े और बड़ी सेना मांगने को अपने दूत मिस्र, वो दूसरा उकाब है, में भेजकर उससे बलवा किया, क्या वो फूले फलेगा? क्या ऐसा कामों का करने वाला बचेगा? क्या वो अपनी वाचा तोड़ने पर भी बच जाएगा? प्रभु यहोवा यों कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, जिस राजा की खिलाई हुई शपथ उसने तुच्छ जानी और जिसकी वाचा उसने तोड़ी, उसके यहां जिसने उसे राजा बनाया था अर्थात बाबुल में ही, वो उसके पास ही मर जाएगा। यही हुआ भी कि सिदकिया को बाबुल लाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई। एहेस्केल अध्याय 17 पद 17 और 18। और जब वे बहुत से प्राणियों को नाश करने के लिए दमदमा बांधे और गढ़ बनाए, तब फिरौन अपनी बड़ी सेना और बहुतों की मंडली रहते भी युद्ध में उसकी सहायता ना करेगा, क्योंकि उसने शपथ को तुच्छ जाना और वाचा को तोड़ा। वे कप कपा गए। एहेस्केल अध्याय 17 पद 18 से लेकर 22 तक। देखो, उसने वचन देने पर भी ऐसे ऐसे काम किए हैं सो वो बचने ना पाएगा। प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मेरे जीवन की सौगंध, उसने मेरी शपथ तुच्छ जानी और मेरी वाचा तोड़ी है। ये पाप मैं उसी के सिर पर डालूंगा और मैं अपना जाल उस पर फैलाऊंगा और वो मेरे फंदे में फंसेंगे और मैं उसको बाबुल में पहुंचाकर उस विश्वासघात का मुकदमा उससे लड़ूंगा जो उसने मुझसे किया है, और उसके सब दलों में से जितने भागे वे सब तलवार से मारे जाएंगे और जो रह जाएं सो चारों दिशाओं में तितर बितर हो जाएंगे। तब तुम लोग जान लोगे कि मुझे यहोवा ही ने ऐसा कहा है। फिर प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं भी देवदार की ऊंची फुनगी में से कुछ लेकर लगाऊंगा। ये भविष्यवाणी यीशु के विषय में है, क्योंकि वही देवदार की ऊंची फुनगी की कलम की सबसे ऊपर वाली कनखाओं में से एक कोमल कनखा है। एहेस्केल अध्याय 17 पद 22 और 24। और उसकी सबसे ऊपर वाली कनकाओं में से एक कोमल कनका तोड़कर एक अति ऊंचे पर्वत सियोन पर लगाऊंगा अर्थात इसराइल, सियोन के ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा, सो वो डालियां फोड़कर बलवंत और उत्तम देवदार बन जाएगा और उसके नीचे अर्थात उसकी डालियों की छाया में भांति भांति के सब पक्षी बसेरा करेंगे। तब मैदान के सब वृक्ष जान लेंगे कि मुझे यहोवा ही ने ऊंचे वृक्ष को नीचा और नीचे वृक्ष को ऊंचा किया, हरे वृक्ष को सुखा दिया और सूखे वृक्ष को फुलाया फलाया है। मुझ यहोवा ही ने ये कहा और वैसा ही कर भी दिया है।